તારીખ 23/7/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 467 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 163
ઓળખાણ ઉપરનો પત્ર પત્ર 467 નો આ પત્રનો વિષય છે કે જ્ઞાની પુરુષને ઓળખાણ જીવને કેમ થતી નથી અને ઓળખાણ થવાનો ખાસ કારણ પણ છે અને અહીંયા વિલક્ષણતા છે એનું કારણ છે એમ બીજું છે. અનાદિકાળથી વિપર્ય બુદ્ધિ હોવાથી અને કેટલીક જ્ઞાની પુરુષની ચેષ્ટા અજ્ઞાની પુરુષના જેવી જ દેખાતી હોવાથી અનાદિકાળથી વિપર્ય બુદ્ધિ હોને છે ઓર કિતને જ્ઞાની પુરુષ કી ચેષ્ટા અજ્ઞાની પુરુષ કે જૈસી હી દિખને મેં આતી હોને છે. જ્ઞાની પુરુષ મેં વિભ્રમ બુદ્ધિ હો જાતી હૈ કે અજ્ઞાની હૈ. એક તો દેખને વાલે કી બુદ્ધિ વિપરીત હૈ, નિર્મલતા ભી નહીં હૈ પર એ વિપરીતતા ભી નહીં હૈ. જ્ઞાની પુરુષ કી પહેચાન કે લીએ નિર્મલતા ભી ચાહીએ ઓર વિપર્યાસ ભી મીટના ચાહીએ. એક વાત. દૂસરા, પૂર્વ પ્રારબ્ધ ઉદય કે યોગ સે ઉનકી પ્રવૃત્તિ દૂસરે સંસારી જૈસી હોતી હૈ. ઉસ પ્રવૃત્તિ મેં ઉનકી જો પ્રવૃત્તિ કરને કી ચેષ્ટા હૈ વો અજ્ઞાની પુરુષ જૈસી હી દિખતી હૈ. ઉપરી ઉપરી દ્રષ્ટિ સે, ઉપરી ઉપરી દ્રષ્ટિ સે એસી દિખતી હૈ. ये दो कारण से ज्ञानी पुरुष में विभ्रम होता है, उसको ज्ञानी है ऐसी प्रतीत नहीं आती, ऐसी पहचान नहीं आती और विभ्रम बना रहता है. विभ्रम में तो खड़ा है ही, विपर्य बुद्धि है इसलिए विभ्रम में तो है ही, वो विभ्रम उसका चालू रहेगा. जो चेष्टा को देखने वाला है उसकी बाह्य दृष्टि होने से उनको अज्ञानी जैसी ही चेष्टा दिखती है. अंतर्दृष्टि वाले को यही प्रवृत्ति में कुछ और दिखता है, इसलिए वहां भी सिर्फ चेष्टा ही कारण नहीं है, कारण इसकी बाह्य दृष्टि है वो है. तो दोनों कारणों में मूल कारण देखने वाले की अयोग्यता है. वो अयोग्यता, इस प्रकार की अयोग्यताएं जब तक नहीं मिटेगी, ज्ञानी पुरुष तो हो सकते हैं कि प्रारब्ध योग से अनंत बार मिले हैं और शायद अनंत बार मिलेंगे भी, लेकिन अयोग्यता नहीं जाएगी तो पहचान पाएगा नहीं. वो तो निर्मलता है तो उसमें भी ओक संज्ञा में भी ये तीन कारण अभी खड़े हैं. ओक संज्ञा में थोड़ा हट ओम संज्ञा में ये जो तीन कारण हैं वो तीन कारण अभी खड़े हैं, बाह्य दृष्टि भी खड़ी है, अभी चालू है, तीनों कारण चालू है, विपर्यास भी चालू है और निर्मलता भी नहीं आई है, ये ओक संज्ञा तक चालू है। अब प्रश्न वो रहा कि वो ओक संज्ञा कैसे मिटे। वही तो तकलीफ है, वो मानता है समोह शरण में जाएगा तो सर्वज्ञ की पूजा भक्ति करेगा, क्या कि वहाँ तो माहौल ही वही है, समोह शरण में तो कोई विरोध कर ही नहीं सकता, करने वाला आता ही नहीं, तो वहाँ तो बहुत भक्ति का माहौल है, देव लोग भी भक्ति करते हैं, अपसराएं भक्ति करते हैं, मनुष्य भक्ति करते हैं, जैसे मुनियों भी भक्ति, मुनिराजों भी भक्ति करते हैं, बहुत माहौल है भक्ति का, तो ओक संज्ञा वाले तो जहाँ जाएगा वहाँ जुड़ जाएगा, जैसा माहौल है वैसे इफेक्ट में तो आ जाएगा। और ऐसे यहाँ भी संघ से या बौद्धिक लेवल से स्वीकार कर लेता है, लेकिन वो बौद्धिक लेवल से कब वो हट जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि अंतरंग निशंकता नहीं है, इसलिए तो विकल्प नहीं उठता, लेकिन विकल्प आता है इसका मतलब कि बुद्धि का विपर्यास भी नहीं गया, उपसंज्ञा भी नहीं गई, निर्मलता भी नहीं आई और बाह्य दृष्टि भी नहीं छूटी, ये सभी कारण खड़े हैं। अब सवाल ये रहा कि ये सब कैसे मिटे, तो जिसको पूर्णता का लक्ष्य हो, यानी वेदना में आ चुका हो और पूर्णता का लक्ष्य बांध लिया हो, पूर्णता का लक्ष्य बांधने से दृढ़ मुमुक्षुता प्राप्त हो गई, ये दो स्टेज में कुछ प्रकार के विपर्यास घटते हैं और कुछ निर्मलताएं भी आती हैं, क्योंकि दर्शन वो वहाँ दबता है दोनों स्टेज में। तीसरा स्टेज उनका वो है कि जो उपदेश उनको अपने लिए मिलता है उसका अमलीकरण करने के लिए इसकी तत्परता हो चुकी है, ये एक विशिष्ट उनकी तैयारी है कि मेरे प्रयोजन की जो बात आई है उसका मुझे अमलीकरण करना है और शीघ्र ही करना है, तो वो प्रयोग के स्टेज में आया। वहाँ ओग संज्ञा प्रयोग से मिटती है, बिना प्रयोग ओग संज्ञा नहीं मिटती, ये दोनों कारण से योग्यता विशेष होने से उसकी अंतरात्म वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अंतरात्म वृत्ति माने क्या, कि मुझे अंतर्मुख होना है, अभी जब तक मेरे परिणाम बहिर्मुख चलेंगे मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए मुझे अंतर्मुख होना है। तो अंतर्मुख कैसे होना वो खुद को पता नहीं है, तो जिस सत्पुरुष को उसने ओक संज्ञा से भी स्वीकार किया है उसमें अंतर्मुखता कैसे हो रही है या होती है, इसकी खोज के लिए उसके पास एक बहुत बड़ा साधन प्रत्यक्ष है, सत्पुरुष। ये साधन सिवा सत्पुरुष कहीं उपलब्ध नहीं है। ये अंतरात्म वृत्ति की इसकी जो जिज्ञासा है और तीव्र जिज्ञासा है, यही कारण से वो सत्पुरुष, इतने कारण मिलने से वो सत्पुरुष को पहचानेगा। इतनी सी बात है, इस पत्र में उतनी बात नहीं खुली है जितनी उन्होंने 674 में खुली है, इसमें तो विलक्षण कुछ दशा में विलक्षणता है, पत्र भी अपूर्ण है ये, अगर पत्र संपूर्ण होता तो बहुत सी बातें आती, क्यों कि उन्होंने ये पॉइंट स्टार्ट किया है वहीं पत्र अपूर्ण मिला है। आखिरी पंक्ति वो है कि उस दशा का विलक्षणपना जिस प्रकार से होता है वह दिखाने योग्य है, बताने योग्य है, जनाने योग्य है। और अब जनाने का चालू किया तो एक ही पंक्ति रह गई है कि एक तो मूल दशा और दूसरी उत्तर दशा, ऐसा दो भाग जीव की दशा का हो सकता है। मेरे प्रत्येक जीव की दो दशा है, एक इसकी जो परिणति है वो मूल दशा है और बाह्य उदय के साथ इसके परिणाम जो जीव के लगते हैं वो उत्तर दशा है। यानी मूल दशा है वो अंतरंग दशा है और उत्तर दशा है वो बाह्य दशा है। तो ज्ञानी की अंतरंग दशा कुछ और है, बाह्य दशा कुछ और है। वो बात वो छेड़ते हैं लेकिन पत्र पूरा नहीं मिला है, इसलिए इस पत्र में अधूरी बात मिली। किंतु पत्र 674 में ज्ञानी और वितराग को कौन पहचानते हैं उस विषय में अच्छा विश्लेषण दिया है और वहाँ आगे का भी थोड़ा प्रोसेस वो दिया है कि इसके पहले ओक संज्ञा में जब वो स्वीकार करता है तब जीव क्या करता है कि अनेक प्रकार की अपनी उलझने हैं, वो उलझने और समस्याएं हैं और जिज्ञासाएं हैं वो सब वो अपने उनके पास रखते हैं, रखता है कि ऐसा क्यों मुझे होता है, ऐसा मुझे क्यों होता है, ऐसा मुझे हुआ इसका क्या कारण है, उसका समाधान उनको मिल जाता है। तो उसकी जो ओक संज्ञा है उसमें एक नया पॉइंट, नया फैक्टर प्लस होता है, वो है कि उसको विश्वास जम जाता है। जब विश्वास जम जाता है कि मेरी सब उलझनें यहाँ से मिटेगी, ये विश्वास उनको बौद्धिक लेवल पे आ जाता है और बौद्धिक लेवल के साथ साथ इनका एक अनुभव है कि अब मुझे वो उलझन नहीं है। अगर समझ से ही इतनी मेरी उलझन शांत हुई और मेरी आकुलता छूटी है तो अब मैं इनकी आज्ञाकारिता में आ जाऊं तो मेरा कल्याण हो सकता है, क्योंकि मैं आगे का रास्ता मैं नहीं जानता और मेरी योग्यता भी मैं नहीं जानता इतनी कि मेरी अयोग्यता कितनी है, मेरी योग्यता कितनी है। तो उस लेवल पे, उस स्टेज पे वो जीव इस प्रकार का एक निर्धार करता है कि मैं कुछ जानता नहीं, मैं कुछ मेरे लिए समझता नहीं, मुझे मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा अकर्तव्य क्या है, मुझे मन ही मालूम है, इसलिए मैं संपूर्ण रूप से आपकी आज्ञा में रहना चाहता हूँ। आप जैसा कहेंगे वैसा मैं शिरोधार्य करूँगा, पूरी ताकत से, पूरा उद्यम से, पूरी शक्ति से मुझे मेरा कल्याण के विषय में आपकी आज्ञा अनुसार चलना है। तब से वो वेदना में और सब अलग अलग स्टेज में आने का उनका आसान हो जाता है। तो इस तरह से वो रास्ता तो बिल्कुल साफ है, क्लियर है, इस तरह से आगे बढ़ सकता है। हाँ तो क्या एक वो तो एक ही योग्यता के अलग अलग फैक्टर है, एक ही योग्यता के अलग अलग फैक्टर है, वो बात है। निर्मलता अलग फैक्टर है, बाह्य दृष्टि का छूटना अलग फैक्टर है, लेकिन एक योग्यता और एक अयोग्यता में साथ रहता है, अविनाभावी रहता है। जब निरल विपर्यास छूटता है तो निर्मलता आती है, तो बाह्य दृष्टि छूटती है, क्योंकि बाह्य दृष्टि खुद विपर्यास है, वो भी वन ऑफ दी विपर्यास है। ऐसे दूसरे भी विपर्यास छूटते हैं, ये सब बनता है।
विपरीतता
विपरीतता में अभिप्राय नहीं, विपरीतता ले अभिप्राय नहीं, विपरीतता ले। जैसे कि सुख बुद्धि है, कर्ता बुद्धि है, आधार बुद्धि है, अपनत्व की बुद्धि है, अनेक प्रकार की विपरीतता तो मिथ्यात्व के साथ होती है। ये सभी विपर्यास जो है वो तो उनको निर्मलता नहीं आने देता और उनको वही दृष्टि से देखेगा जैसे कि खुद कर्ता बुद्धि से व्यापार करता है और ज्ञानी भी व्यापारी है। तो जैसे मैं व्यापार करता हूँ वही वैसे ही वो करता है, ऐसा माने वो कैसा व्यू पॉइंट उसका वही रहेगा, टेकअप कैसा करेगा वैसे ही टेकअप करेगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसा ही बनता है कि अपने बराबर ही तुलन करेगा, अपनी दृष्टि के बराबर ही वो तुलन करेगा। यही बात होने वाली है, दबा जी,
कोई तो पर्याय दृष्टि से देखता
है। हाँ, पर्याय दृष्टि वो भी विपर्यास है,
कोई पर्याय दृष्टि से देखेगा,
वो पर्याय दृष्टि से देखेगा, अपनी पर्याय दृष्टि है तो वो पर्याय दृष्टि से ही देखेगा। अनेक प्रकार के विपर्यास तो बहुत से प्रकार के हैं, तो जैसे जैसे मुमुक्षुता यथार्थ मुमुक्षुता में आगे बढ़ेगा उतने में सभी प्रकार के विपर्यास ढीले पड़ जाएंगे और कुछ तो मिट भी जाएंगे। जैसे कि जीव का अनादि से का जो विपर्यास है वो संसार की उपासना का है, उसको संसार उपादेय है, तो बिना विचार किए भी उसको मोक्ष है ही हो गया। एक बात उपादेय होने से प्रतिपक्ष वाली बात तो यही हो ही जाती है, जिसको मीठा पसंद है उसको कड़वा पसंद नहीं है, सीधी बात है। सज्जन पसंद है उसको पसंद है, उसको दुर्जन पसंद नहीं है, सुगंध पसंद है उसको दुर्गंध पसंद नहीं आएगी। उस तरह से संसार तो अनादि से उपादेय है, वो मोक्ष का ध्येय जब होता है तो पूरा अभिप्राय बदल जाता है, वो अभिप्राय पूरा बदलता है कि नहीं मुझे, मेरे लिए एक मोक्ष ही उपाधि है और संसार एक अंश में भी मुझे उपाधि नहीं है। वो पूर्णता के लक्ष्य में स्टेज में वो अभिप्राय पूरा नाश हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। तो कुछ कुछ स्टेज में कुछ कुछ अभिप्राय का अभाव होता है और कुछ एक अभिप्राय जो ज्ञान दशा में मिटने वाले हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, ऐसी बात बन रही है। वो थोड़ा वाइड सब्जेक्ट है और गहरा भी है, विशाल भी है। अब तो यथार्थता का एक आर्टिकल होने वाला है, उसमें बहुत सी बातें आएंगी, बहुत सी बातें आएंगी, उसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत मुमुक्षु के लिए कई बातें आएंगी। પહેલા પૂર્ણતાનું લક્ષ આવે, પછી સરળપણાથી અપક્ષપાતપણે પોતાના દોષ જોવે છે એવી પરિસ્થિતિ આવે છે, અને એ ભૂમિકામાં પણ અવલોકનની ભૂમિકા એસી ભૂમિકા હૈ, ઇસ ભૂમિકા મેં अपने दोषों का अवलोकन करते हुए, अवलोकन करने वाला जो दृष्टिकोण है उस कुछ गहराई में जाने का प्रैक्टिस के दौरान वो परिस्थिति योग्यता आती है। तो मेरे दोष हुआ उतना ही नहीं देखेगा, इसके पीछे मेरा कौन सा विपरीत अभिप्राय था तो ये दोष हुआ, वहाँ तक वो जाएगा, रूट कॉज पर जाएगा, दोष को देखेंगे उतना ही नहीं, दोष का रूट तक उसका दृष्टिकोण चला जाएगा, उतनी गहराई प्रैक्टिस के दौरान आएगी। जब ये बात बनेगी तो वो अभिप्राय पर प्रहार आएगा करेगा वो, और वो अभिप्राय कि कुछ एक प्रकार का अभिप्राय उसमें अभाव भी होता है और कुछ एक प्रकार का ढीला पड़ता है, ये दोनों बात उस स्टेज में भी बनती हैं। इस प्रकार से योग्यता तैयार होती है और गाने गाने की पहचान हो सकती है, मुमुक्षु को भी हो सकती है, और हो गई तो पहला संकेत आ गया, वो बात प्रत्यक्ष है। स्वच्छंद मत आग्रह तजी वरते सदगुरु लक्ष्य। मताग्रह मैंने मताग्रह दो प्रकार के हैं। आज ही थोड़ा विशेषित है, बात तो रांची में चल गई थी थोड़ी 466%, आज थोड़ा और भी विचार आया स्पष्ट रूप से कि एक तो संप्रदाय वाला जो मत है इसका आग्रह है उसको भी मताग्रह कहते हैं, कि जैसे कि हम दिगंबर, अन्य की तो सवाल ही नहीं है, तो एक संप्रदाय बुद्धि आएगी। उस मताग्रह के कारण से दिगंबर संप्रदाय में जो परंपरा चल रही है उसमें जो विपरीतता घुस गई 2500 साल के पीरियड के हिसाब से, वहाँ भगवान चले गए तो इसके पीछे कोई धनी नहीं रहा, इस धर्म का कोई धनी नहीं रहा है, कोई किसी की मानते नहीं है, और उसमें से ये श्वेतांबर निकला है। अगर आचार्यों की मानते तो ये दूसरा पंथ नहीं निकलता, लेकिन जो दिग्गज आचार्य थे उनकी मानी नहीं तो दूसरा पंथ भी चालू हो गया। तो मतलब क्या है कि उसमें जो विकृतियाँ आई है अभी भी है, उनका स्वीकार नहीं होगा, और मध्यस्थता से वो देख नहीं सकेगा कि सत्य कहाँ है कैसा है। और ज्ञानी को ज्ञानी का मत का वो स्वीकार शायद नहीं करेगा, क्योंकि हम दिगंबर हैं तो ज्ञानी को उतना नहीं स्वीकारेगा, मध्यस्थता उतनी आएगी नहीं। तो ये तो एक दोष मताग्रह का है, हो गया सांप्रदायिक बुद्धि वाला, काफ़ी संकुचितता आ जाती है। मैं एक दृष्टांत दिखाऊं, गुरुदेव हैं वो जैसे प्रसाद देवे अन्य मत में वैसे प्रसाद देते थे, तो बात क्या हो गया कि किसी ने गुरुदेव के पास कोई खाने की चीज़ रख दी, तो गुरुदेव तो कुछ खाते नहीं थे, कोई ने काजू रख दिया, कोई ने बादाम रख दी, कोई ने द्राक्ष रख दी, कोई ने पिस्ता रख दिया, किसी ने मिठाई रख दी, जिसने किसी ने फल रख दिए हैं, हाँ पिपरमिंट टॉफी भी रख देते थे, तो गुरुदेव तो कुछ खाते नहीं थे, वो तो दो टाइम जो अपना सा सिंपल खाना खाते थे वो ही खाते थे, एक चीज़ भी मुँह पे नहीं लगाते थे कभी, कि चलो बादाम में तो आधे खा लिया वो भी नहीं, और वो जो भी आती थी वो बांट देते थे, जो आया उसको थोड़ा 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 दे देते थे। अब जब पता चला लोगों को गुरुदेव ऐसे इनके पास रखने से वो अपने हाथ से देते हैं, तो सबको क्या हुआ कि हमको तो गुरुदेव के हाथ से प्रसाद मिला, गुरुदेव के हाथ से प्रसाद मिला, सब ऐसे ही भावना में आते थे। पर गुरुदेव वो देखते थे कि चलो इनकी ज्ञानी के प्रति की भावना तो उसी बहाने बढ़ती है, तो वो प्रवृत्ति चालू होगी पिछले सालों में, पहले नहीं थी वो, पिछले कुछ सालों में ये प्रवृत्ति 5-10 साल में चालू हो गई और बढ़ती भी गई। अब हीरालाल जी के मन में एक विकल्प रहा करता था, क्योंकि मूल दिगंबर है, क्योंकि अपने दिगंबर में तो ये प्रसाद बांटने की बात है ही नहीं, ये तो विष्णु वगैरह अन्य मत में है, गुरुदेव ऐसा क्यों करते हैं। अब वो कभी किसी को बताते नहीं थे, क्योंकि उन दिनों में अपना दोस्त बताने के या अपने विचारों बताने के कोई पद्धति आपस में समय थी नहीं, और अब भी नहीं है सोनगढ़ में। तो अब जब ये चर्चा चलने लगी, जब गुरुदेव के जाने के बाद अब जो अपने सर्कल में ये चर्चा चलने लगी, तब उन्होंने स्वीकार किया कि अभी संप्रदाय बुद्धि में तो मेरे को ऐसा होता था, कि हमारे दिगंबर में तो ऐसा नहीं होता है, गुरुदेव क्यों ऐसा करते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि वो गुरु के गुरु हो गए, इतना स्वच्छंद आ गया, परिणाम तीव्र कसाई का नहीं दिखेगा, परिणाम तो सामान्य कसाई का देखेगा कि एक विकल्प आया कि ऐसा क्यों करते हैं, सामान्य विकल्प रूप परिणाम है, लेकिन अपराध कितना बड़ा है, अविनय का अभक्ति का अपराध है, और दर्शन मोटिव हो जाता है। तो बात मामूली दिखती है, कैसा चला गया, लेकिन अभिप्राय तो रह गया ऐसा क्यों करते हैं। उलखन का तो सवाल ही नहीं होता, उलखन से तो बहुत दूर है। और भक्ति और अविनय का परिणाम हो जाएगा, भक्ति वाले को भी उलखन तो नहीं होती है, उसको तो ये तीन कारण चाहिए। वोकसंज्ञा में तो भक्ति होती है, इसलिए थोड़ी पहचान हो जाती है, भक्ति होने से कोई पहचान नहीं होती है, तो उसको तो अभक्ति होगी, तो पहचान से तो बाप काफी दूर चला गया वो तो। अभी चर्चाएं चलती थी तो मन की बात तो बोले तब तो पता चले। ऐसा संप्रदाय बुद्धि में होता है, उसी को मताग्रह कहते हैं। एक दूसरा मताग्रह वो है कि मेरा ये मत है, उसकी पकड़ छूटती नहीं है कभी कभी, ऐसे प्रकार की प्रकृति होती है, वक्रता की कहो, असरलता की कहो, जिद की हट की कहो, कि कुछ बौद्धिक लेवल पे कुछ न कुछ निर्णय करता है जी, और अपना अभिप्राय या मत को ठीक करता है, फिर वो मत उसका बदलता नहीं जल्दी, वो मत का आग्रह उनको रहता है, और उसको लगता है कि ये मेरी दृढ़ता है, आग्रह नहीं है। ये गड़बड़ होती है। ये दो प्रकार की भूल होती है, और दोनों प्रकार एक ही दोष के बच्चे हैं, स्वच्छंद, जो सबसे बड़ा दोष है, महादोष जिसको कहें, वो स्वच्छंद के ही वो मताग्रह, वो उसका ही संतान है और कुछ नहीं है। स्वच्छंद के तो बहुत दोष है, अनेक संतान है इसके, तो इसमें एक मताग्रह भी एक होता है। तो वो 466 में लिखा ना कृपाल गुरुदेव ने कि सत्संग में परम ज्ञानी ने उपदेश दिया, शिक्षा बोध ग्रहण करना, अतः कदाग्रह मत मतांतर विश्वासघात और असत वचन आदि का तिरस्कार हो जाए। तो ये कदाग्रह और मताग्रह में वो बात जाती है, वो तो सत्संग वाले को छूट जाना चाहिए, यानी कि सत्संग में आते हैं उनको तो ये बात छूट जानी चाहिए, वरना स्वच्छंद ही नहीं गया।
अभक्ति का परिणाम हो जाता है, भक्ति करते करते अभक्ति का परिणाम।
हाँ, और वो भक्ति तो करेगा, तो उनको तो क्या है कि मैं तो भक्ति करता हूँ, लेकिन अभिप्राय में अभक्ति पड़ी है, तो इसकी वो अभिप्राय इसकी भक्ति को खा जाता है। क्या होता है, भक्ति का परिणाम उसको होता भी है, लेकिन अभक्ति का अभिप्राय बंद गया कोई एक प्रसंग देख करके, खत्म। हाँ, अभिप्राय खुद ही परिणाम है अभक्ति का, तो अभिप्राय बलवान है, उसका जो भक्ति के परिणाम हो गया वो सब वो खा जाएगा।
ऐसा नहीं लगता है कि अभक्ति हो गया, जैसे ऐसा है कि कई बार अपने भी सोचते हैं कि भाई से ऐसे क्यों नहीं करते हैं, ऐसे क्यों नहीं बोलते हैं, ऐसा मुझसे को क्यों नहीं बोलते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर देते हैं, तो सब गड़बड़ है। ऐसा नहीं लगता कि हम अभक्ति करते हैं।
हाँ, लेकिन अभक्ति है, स्वच्छंद भी है और अभक्ति भी है, होती है। अच्छा, ये बात
है,
सेतमा तो एक ही बात है। कृपालु देव ने सबसे ज्यादा कोई ठोक बजा के बात किया है तो वही बात किया है कि ज्ञानी पुरुष जो भी करते हैं वो सही करते हैं, उनके सर्व आचरण मेरे लिए वंदनीय है। उसमें आ गया तो बच गया, वरना बुद्धि वाला गड़बड़ किए बिना रहेगा, क्योंकि बुद्धि नहीं है, विपर्य बुद्धि साथ में है, बुद्धि का विपर्यास साथ में है, तो जो ज्यादा बुद्धि है वो ज्यादा तर्क उठाएगी। आज तो अभक्ति थी जाए तो भक्ति थी जाए ने कोई बार अभक्ति नो अभिप्राय थी जाए એટલે કાઢવો મુશ્કેલ બને એવું થઈ જાય नहीं आग्रह रखना है तो अपने लिए रखो उसको कहते हैं उसको आग्रह नहीं कहते फिर उसको मक्कमता कहते हैं कि मक्कमता से हमको ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रहना है उसका आग्रह और मक्कमता रखना दूसरे के लिए जो आग्रह है वो तो एक अपनी बात थोपने का विचार है उसमें तो कसाई प्रगट है उसमें तो कसाई प्रकट होता है वो आग्रह में तो होता ही है जिसको ऐसा होना है उसका ही काम है दूसरे का काम ही नहीं है बस योग्यता एक शब्द में सब आ जाता है इसी का नाम योग्यता अब अपने को प्रामाणिकता से विचार करना है कि संसार से छूटना है कि नहीं छूटना है बात तो जो निर्भर है वो हमारी ईमानदारी पे है पर हम खुद हम बेईमानी रखेंगे तो इसका तो क्या इलाज है हमारे लिए हम बेईमान हो जाएंगे तो फिर इसका क्या इलाज है इसका कोई इलाज नहीं
कभी ऐसा लगता है
मायाचार्य का उसमें तो हमारे से भी मायाचार्य की बात होगी नहीं
हम लोग करते हैं गुरु को
हाँ तो मायाचारी होगी
हम
अन्य हाँ तो मायाचारी तो होगी
नहीं अगर दुरुपयोग नहीं करते हमारी भावना की वृद्धि करने की भाव को मुख्य रख करके हम अगर आपके आराम के टाइम को गौर करते हैं आपका अन्य जो स्वास्थ्य के हेतु से जो ध्यान रखना चाहिए उसको भी गौर करते हैं तो इस पर यह परिणाम किसमें जाएगा भक्ति में जाएगा भावना की पकड़ में जाएगा कि अभक्ति के परिणाम में जाएगा
वो तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग जीवों के लिए बात तो अलग अलग है इस कॉन्टेक्स्ट में मैं भी बोलता हूँ कि उसमें इन जीव की योग्यता पर आधार है वो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो तीव्र भावना में आते हैं उनसे वो बात ओवरटेक भी हो जाती है या हो सकती है तो उसमें इसका कोई दोष नहीं गिनना चाहिए ये इतनी भावना नहीं होने के बावजूद भी अगर हम केयरलेस हुए तो इसमें दोष हो सकता है दोनों बातें उसमें दो प्रकार उसमें हो सकता है आड़ खुद ही अच्छा नहीं है आड़ खुद ही अच्छा नहीं है आड़ की तो बात ही बात खत्म हो गई आड़ की बात ही बात भावना का आडंबर वाली हो गई देखिए भावना वाला हेल्थ को नहीं समझे वो बात तो नहीं है भावना वाला हेल्थ को समझता है क्या भावना वाला ऐसा विचार करेगा कि भले ही बीमार हो जाए उनको टाइम चाहिए भले ही बीमार हो जाए भले ही थक जाए हमको टाइम चाहिए तो भावना वाला कहाँ रहा, वो तो भावना के आड़ वाला हो गया। तो जब बात सही है, यथार्थ है, वहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है, और जहाँ बात यथार्थ नहीं है वहाँ तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। आप बात वो है ठीक है, लगता है एक बात है, होना दूसरी बात। लगने से क्या मतलब, वो तो ओक संगने वाला मानता है कि हम ज्ञानी को पहचानते हैं, क्योंकि हम ज्ञानी की भक्ति करते हैं, समर्पण करते हैं, अर्पणता करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। एक एक आदमी सामान्य आर्थिक स्थिति का है, इसकी कुछ अर्पणता नहीं हो, लेकिन भावना में तो ऐसा हो गए कि अगर मेरे पास हो तो मेरा पैसा, एक एक पैसा मैं सन्मार्ग में लगाता हूं। फिर भी थोड़ा करकसर करके भी वो दो पांच पैसा देगा, क्योंकि अभिप्राय में वो बात है, जब मैं पेट के लिए कुछ करता हूं तो सन्मार्ग के लिए तो मुझे कुछ करना ही चाहिए। ये तो तीर्थंकर का, जिनेंद्र परमात्मा का मार्ग है, इसके लिए तो मुझे कुछ न कुछ समर्पण करनी ही चाहिए। तो उसका समर्पण दिखेगा नहीं, क्योंकि बाह्य परिस्थिति इतनी नहीं है। दूसरा, एक व्यक्ति ऐसा कि लाखों रुपये का दान देता है, तो इस पर से कोई यथार्थता का नाप थोड़ी ना निकलता है, नहीं निकलता है। तो कोई बाह्य दृष्टि से तो कोई बात देखनी नहीं चाहिए। यथार्थ है वो यथार्थ है, अयथार्थ है वो अयथार्थ है। सबको अपना अपना संभालना है, दूसरे के परिणामों की पंचायत में हमें जाने की जरूरत नहीं है। और ये इस प्रकार की जो चर्चा है वो दूसरों के परिणाम को लक्ष्य में लेकर के हमें करनी भी नहीं है, करनी नहीं चाहिए भी। बस ये मर्यादा में हम खुद आ जाए तो हमारी भलाई का कारण है।
वो
भूल हमको सुधार लेनी चाहिए, वो भूल हमको सुधार लेनी चाहिए। तो भी हेल्थ का मुख्य करके हमारे को कोई ऐसा अधिकार नहीं मिलता कि हम किसी को भी ठेस पहुंचा सके। इस प्रकार का
नहीं, वैसे क्लियर कट पर पर्सनल एकदम बात बात कर ले, एकदम सब कुछ क्लियर कट कर दे, उसके बावजूद भी अगर ये घटना घटती हो तो फिर हमारा कोई दोष होता
है? भावना की बात चलती है,
भावना वाले चीज का ही। जैसे कभी कोई किसी को उतना नहीं समझ में आता तो भावना के मुख्यता उसमें कभी कोई ओवरटेक हो जाता हो, फिर उसके साथ जैसे पर्सनल मीटिंग करके सब बातचीत करने के बावजूद भी उसको भावना को तेज पहुंचती हो,
ठेस पहुंचने का ऐसा क्या बनता है कि ठेस पहुंचती है, ये सवाल पैदा होता है।
तो मतलब होता है कि आपका टाइम जितना वो अपेक्षा रखता है उतना नहीं मिल पाता है। जैसे कोई आराम का टाइम है वो
ऐसा है, भावना वाला बिल्कुल नहीं समझेगा, वो बात नहीं है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, 5-10 मिनट का जो पकड़ कर लेते हैं वो बात ठेस पहुंचाने
के लिए। 25% ढीली होने के बावजूद भी, 25% ढील छोड़ने के बावजूद भी ये
बनता हो तो ठीक है, अपन थोड़ा और ढील रखते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ जाता है, इसमें क्या फर्क पड़ जाता है। 5-10 मिनट में कोई तबीयत थोड़ी और खराब हो जाती है क्या, ऐसा तो कोई बनने वाला नहीं है।
एक जन को अगर 5-10 मिनट का छूट देते हैं तो दूसरा भावना वाला भी खड़ा है जो 10 की जगह
पे, देखो सब एक सी भावना वाले होते नहीं, कोई यथार्थ भावना वाले होते हैं तो कोई एक दो ही होते हैं।
यथार्थ भावना वाले भी होते हैं, वैसे तो दो अगर लाइन में खड़े हैं और दोनों का डिमांड हो तो फिर कोई तो रीजनेबल होना चाहिए।
तो उसमें तो खुला रूप से मीटिंग कर सकते हैं, तीनों साथ में बैठ करके देखिए हमको ये लगता है, फिर भी आप भी समझदार हैं, आपको उचित लगे वैसा करिए। आप मेरे स्थान में आप थिंकिंग करें, मेरे दृष्टिकोण से आप थिंकिंग करें, आपको भी ऐसा ही लगेगा, फिर भी आपको नहीं लगता है, चलो जैसा हो वैसा होने दो, उसको क्या बड़ा कोई
नहीं,
ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस विषय में हम भावना को ठेस पहुँचाए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। देखिए आप लोग भावने वाले हैं, हम जो टाइम देते हैं वो बिना भावना थोड़ी ना देते हैं, हम भी अगले का कल्याण होने का, भावना वाले का कुछ आत्महित होता है तो टाइम देते हैं। हाँ, तो वो भी एक भावना का ही विषय हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसको भी समझना चाहिए। चलो हम अलाउ करते हैं, हमारे से डिसीजन ले लो, अपना डिसीजन को छोड़ दो, बात खत्म हो जाएगी।
वो तो आपका सही हुआ, हमारे तरफ से मुमुक्षु की तरफ से क्या विवेक होना चाहिए?
मुमुक्षु तरफ से विवेक तो होना ही चाहिए, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि डिफरेंस रहता है कोई ओपिनियन में, तो आप छोड़ दो, हमारे पे रख दो, बात खत्म हो जाएगी। देखो 430 में क्या लिखते हैं, कोई भी जीव परमार्थ माने आत्मकल्याण, कोई भी जीव परमार्थ के प्रति अंश मात्र पने भी प्राप्त होने के कारण को प्राप्त हुए ऐसा निष्कारण करुणाशील ऐसे ऋषभादि तीर्थंकरों ने भी किया है, तो यही पॉलिसी को सभी ज्ञानी अनुसरण करते हैं कि अगले का कल्याण हो, और कल्याण का एक कारण भी उसको मिलता हो, निमित्त भी मिलता हो, तो उसके लिए बिना कारण वो अपना समय शक्ति का भोग देंगे। क्यों? कि ऋषभादि तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर से ये बात चली आ रही है, क्योंकि सत्पुरुषों के संप्रदाय की सनातन ऐसी ही करुणावस्था होती है। तीनों काल सभी संप्रदायों, सभी सत्पुरुष उसको, उसका समूह को कहते हैं सत्पुरुष का संप्रदाय, उनकी करुणावस्था ऐसी ही होती है, तो उसमें कारुण्य वृत्ति, निष्कारण कारुण्य वृत्ति काम करती है। समय मात्र का अनवकाश से, मैंने एक समय की देरी नहीं लगाना उसमें, पूरा लोक आत्म अवस्था प्रति हो, आत्म स्वरूप प्रति हो, आत्म समाधि प्रति हो, अन्य अवस्था प्रति न हो, अन्य स्वरूप प्रति न हो, अन्य आदि प्रति न हो, जिस ज्ञान से स्व आत्मस्थ परिणाम होता है, यह ज्ञान सर्वजीव के प्रति प्रकट हो, अनवकाश रूप से, मैंने अभी अभी सर्वजीव को वो ज्ञान प्रति रुचि हो, ऐसा ही जिसका करुणाशील सहज स्वभाव है, यही संप्रदाय सनातन सत्पुरुषों का है। आपके अंतःकरण में, सुभाग भाई को लिखते हैं, ऐसी ही करुणा वृत्ति है, ऐसा करके लिखते हैं। सुभाग भाई तो ज्ञानी नहीं हुए थे, लेकिन यथार्थ मुमुक्षु थे, तो लिखते हैं कि आपके अंतःकरण में, आपके विचार में नहीं, आपके अंतःकरण में भी ऐसी ही करुणा वृत्ति है, इसलिए कुछ एक व्यक्ति के लिए आप हमको लिख रहे हैं, हमको मालूम है, ऐसा करके लिखा है। तो इनकी वृत्ति दिखाने के लिए पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया, तो इससे प्रकाश होता है कि तीर्थंकरों को और ज्ञानियों को निष्कारण करुणा की वृत्ति कितनी जबरदस्त होती है। हम एक मुमुक्षु को बोले थे, उतना उलझन में आ गया था, कुछ बातें उनको अपने अजीत भाई अलवर वाले मानचंकार विद्वान आदमी थे, पंचाध्यायी की कुछ गाथाएं पढ़ करके बहुत उलझन में आ गया, सारे हिंदुस्तान में फिरे, सोनगढ़ आ गया, सोनगढ़ वालों को मिले, लालचंद भाई को मिले, युगल जी को मिले, कुमचंद जी को मिले, जितने नामी अनामी हैं सबको मिल चुके थे, उसके उलझन नहीं जाते थे। उसका वेट, एक तो दुबला आदमी 5-6 किलो घट गया, नींद नहीं आती थी, खाने का नहीं होता था। डॉक्टरी ट्रीटमेंट घर वालों ने चालू कर लिया कि ऐसे बीमारी दिखती नहीं है लेकिन इसका हो गया है क्या। फिर वो आगरा के शिविर में आए थे, आगरा के शिविर में कुछ स्वाध्याय के दौरान कुछ बातें चल गई तो अपनी उलझन उनको लगा के इसके पास भी रख, मेरे पास भी रखें। इसके पहले हमारा इनका कोई खास परिचय नहीं था, लेकिन वो आगरा के शिविर में पद्मचंद जी के आमंत्रण से आए थे। तो फिर हमारे कमरे में गए तो पाप पीछे पीछे वो संचाध्यायी ग्रंथ लेकर के आए कि आप इस गाथा समझाइए हमको। हमने उस गाथा का अर्थघटन किया तो फिर वो एकदम हल्का सा हो गया, उसके बाद वो क्या वो निकल गया, सब जो भी इनकी थिंकिंग में उलझन थी वो सब निकल गई। फिर वो बोला कि हम सब जगह जाके आए हैं, कहीं से हमको समाधान नहीं हुआ है, आपसे हमको समाधान हुआ। तब से वो काफ़ी नज़दीक परिचय में आ गए हैं। अब कुछ गड़बड़ हुई ऐसा सुना तो महावीर जी के शिविर में नहीं आए, उनके बड़े भाई ऐसे बोले कि अभी बहुत उलझन में है इसलिए वो नहीं आ पाए। मैंने कहा सत्संग में तो उलझन निकलती है, सत्संग को क्यों अवॉइड करते हैं। तो कहने हमने बहुत बोला लेकिन बोले कि हम नहीं आएंगे, इसका तो कोई उपाय नहीं। तो क्या है कि एक दफ़े वो पता चला कि हमारी उलझन निकलती है फिर विश्वास तो आना चाहिए कि चलो और उलझन में आए तो यहाँ से निकाले। फिर सत्संग करे कि नहीं हम नहीं आएंगे, सत्संग में भी नहीं आएंगे, तो इसका मतलब इसका तो कोई रास्ता ही नहीं। तो गड़बड़ बुद्धि वालों को होता है, विद्वान है तो बुद्धि ज़्यादा है तो नहीं करेंगे। अब क्या कहते हैं कि जीव को इसके बाद की आपके अंतःकरण में ऐसी कारुण वृत्ति से लिमड़ी विषय का बार बार विचार आया करता है। ये बात थी लिमड़ी के हाइनेस की। लिमड़ी के हाइनेस इन दिनों में बम्बई में रहते थे और सुभाष भाई जानते थे कि आदमी कुछ ठीक है अगर उनको कृपालु देव का भेंट हो जाए तो इसका भी कल्याण हो अच्छी तरह से शायद हो सकता है। और आपके विचार का एक अंश भी फल प्राप्त हो जाए उसको लिमड़ी दरबार को, अथवा यह फल प्राप्त होने का एक अंश भी कारण उत्पन्न हो जाए तो इस पंचम काल में तीर्थंकर का मार्ग बहुत अंश से प्रकट होने के बराबर है। क्योंकि एक राजा को जब वो बात बैठ जाएगी तो फिर वो बहुत से बहुत लोग उसके अनुसरण में आ जाएंगे। बात तो ठीक है कि चलो कोई पुण्यवंत होता है, कोई श्रीमंत होता है, जैसे कोई अरबपति है उनको बात बैठा है तो उसको समर्पण बहुत हो जाता है इनसे, तो मार्ग प्रभावना बहुत होती है, बा काफ़ी लोग अनुसरण इनके पुण्य के कारण से भी कर लेते हैं। तथापि ऐसा संभवित नहीं है और उस रास्ते से होने योग्य नहीं ऐसा हमको लगता है, जिससे संभवित यथा योग्य है अथवा इसका जो मार्ग है यह हाल तो प्रवृत्ति के उदय में है। हम इसका मतलब हम और वह कारण जब तक उसको लक्ष्यगत नहीं होगा वहाँ तक दूसरा उपाय यह प्रतिबंध रूप है, निसंशय प्रतिबंध रूप है। क्या है तो वो हाइनेस है, वो तो कृपालु देव के पास सुभाग भाई के कहने से तो जाएगा नहीं, कि मुझे आत्म कल्याण करना है। अब सुभाग भाई का क्या अनुरोध है कि आप उसको मिल लो। अब कृपालु देव मिलने को जाएंगे तो उनको ज्ञान चढ़ने वाला नहीं है क्योंकि वो तो कुर्सी से नीचे बैठने वाला नहीं है। पर कृपालु देव आएगा तो किसी एक विद्वान को जैसा वो आदर करेगा उतना आदर करके उनको कुर्सी देंगे, वो कुर्सी अलग होगी, वो कुर्सी अलग होगी राजा की चेयर होती है, जो गेस्ट आता है, मिलने वाला विजिटर आता है उसकी चेयर अलग होती है। इनके ड्राइंग रूम में भी विजिटर्स तो आते ही रहते हैं हमेशा, तो उनको कहाँ से लगने वाला है। तो कम प्रवृत्ति में है तो वहाँ, तो अगर वो सन्यासी होते तो दूसरा आदर हो जाता, चलो भी कोई हमारे गुरु आए हैं हमको उस तरह से शिष्य के रूप में देखना चाहिए। लेकिन गृहस्थी को तो देख नहीं सकते, तो बात तो वो बनने वाली है नहीं। अगर हम जाएंगे तो वो भी निष्फल होने वाली चीज़ है, तो बोलो कि असंभवित है, वो संभव नहीं दिखता है तो बहुत विचिक्षण थे ना, समय शक्ति का फालतू का खर्च नहीं करें, देखेंगे कि कैसा दर्द है, कैसा गरज है दर्द मिटाने का, कि फिर उसको दवाई देंगे और वो भी मात्रा में देंगे बहुत विचिक्षण थे। नहीं, ऐसी मैंने ऐसी बराबरी की, और सभी ज्ञानियों को ऐसी होती है, तीर्थंकरों के होती है वो तो विशेष रूप से होती है, मोक्षों को भी होती है और ज्ञानियों को, सभी ज्ञानियों को होती है। ऐसा लिखा ना कि सनातन मैंने तीनों काल के ज्ञानियों की ऐसी ही कारुण्य वृत्ति होती है, होती ही है सभी ज्ञानियों की, ऐसी बात है। तो यहाँ कहते हैं कि वो बाह्य चेष्टा से विभ्रम बुद्धि हो जाती है, अथवा जीव से ज्ञानी पुरुष के प्रति यह चेष्टा का विकल्प आया करता है, बार बार उनको ये विकल्प आएगा, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं, ये बात हो जाएगी, ये विकल्प उसको पहचान करने देगा, यानी अभक्ति में ले जाएगा या और उसका परिणाम बहुत विपरीत आ जाएगा आगे जा करके। बार बार जब विकल्प आएगा तो उसके परिणाम और गिर जाएंगे, ये बात बनेगा। दूसरी बाजुओं से ज्ञानी पुरुष का जो यथार्थ निश्चय हुआ हो, तो जैसे कि अपने चर्चा होगी वो दूसरी बाजू की है, तो कोई विकल्प उत्पन्न करने वाली ऐसी ज्ञानी की उन्मत्त आदि भाव वाली चेष्टा, पागलपन जैसी चेष्टा भी दिखे, प्रत्यक्ष दिखने में आए तो भी, दूसरी ओर का निश्चय के बल के कारण से वह चेष्टा अविकल्पपणा को भजती है। ये चेष्टा विकल्प उठाए नहीं देगी, उसमें भी उसका अंतरंग दिखेगा और उसका विकल्प अविकल्प हो जाएगा, विकल्प नहीं होगा। अथवा ज्ञानी प्रत्येक की चेष्टा का कोई अगम्यपणा ही ऐसा है, मतलब इसका सारांश ऐसा है कि ज्ञानी पुरुष की चेष्टा का कोई अगम्यपणा, किसके लिए, सामान्य बुद्धि वालों के लिए वो अगम्यपणा है, कोई ऐसा ही है कि अधूरी अवस्था वालों को या अधूरा निश्चय वाले जीव को विभ्रम या विकल्प का कारण होता है। ऐसे भी हो सकता है, कभी तीव्र शताब्दी नहीं हुए तो ऐसा हो सकता है, परंतु वास्तव रूप से तथा पूरा निश्चय से यह विभ्रम और विकल्प उत्पन्न होने योग्य नहीं है। इसलिए इस जीव का अधूरा ज्ञानी पुरुष प्रत्यय का निश्चय यही इस जीव का दोष है। अधूरा निश्चय है, वो दोष है, वो दोष के कारण से ये बात संभवित है। तो उनको तर्क वितर्क विकल्प आ जाएगा, विभ्रम आ जाएगा और वो परिणाम उनको भक्ति में ले जाएगा। इस तरह से बाकी और भी दो पैराग्राफ है, आगे का और भी बातें लिखी हैं। स्पष्टीकरण अच्छा दिया है, जितना दिया है भी।
अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंह।